نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آج ہم شروع کریں گے حدیث نمبر 346 باب نمبر 14 ہے کنٹینیوشن نمازوں کے اوقات کے باب کی نماز ظہر کے بارے میں اور اسی طرح نماز عصر کے میں پڑھ چکے بیچ میں دوسری باتیں بھی آتی ہیں آخری چیز جو ہم نے پڑھی وہ یہ تھی کہ امت مسلمہ کو الرٹ دی ہے کہ دنیا میں تھوڑا وقت گزارنے کے باوجود قیامت کے دن ان کو اجر زیادہ ملے گا مغرب کا وقت لفظ مغرب پہ بھی غور کیجئے گا مشرق مغرب غین رابع نہیں چاہتے کہ مغرب گرامر کے اعتبار سے کہہ لیکن مغرب سے کہہ لیجئے وہ نماز جو سورج کے غروب ہونے کے وقت پہ پڑھی جاتی ہے اس کو سورج مغرب کہتے ہیں اور ہم سب بچپن سے یہ بتایا ہے کہ یہ وہ نماز ہے جس کو تیسری دیتے ہیں فجر ظہر عصر مغرب اور عشاء حدیث نمبر 346 مغرب کا وقت عن رافع بن حدیج سے روایت ہے رضی اللہ عنہ قال انہوں نے فرمایا کن نصلی المغرب ہم تھے مغرب کس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فین صرفو پس پھینکتا احدنا ہم میں سے کوئی ایک ان کے ہاتھوں میں ہوتے تھے اکثر سفر پہ جب جاتے باہر نکلتے تو اپنی حفاظت اور زمین کو کھودنے کے لیے بھی رکھتے تھے تو جب کوئی جاتا اور کوئی تیر پھینکتا وین نہ ہو تو بے شک وہ لا یبصرو مباقی نبلی ہی تو دیکھ لیتا مطلب کیا ہے کہ مغرب کا وقت تب ہوگا جب پورا اندھیرا نہیں ہوگا بھی روشنی ہوگی اور کہ کوئی چیز گرتی ہے تو وہ انسان کو نظر بھی آ جاتی ہے تو نماز دیر سے نہیں پڑھنی چاہیے مغرب میں ہو اور آپ نے یہ بات سنی ہے کہ نہیں سنی لیکن ہمارے کلچر میں غیر معروف ہے اجر ہے اس کا وہ کیا ہے کہ صحابہ کرام مغرب کی اذان کے فوراً بعد دو رکعت اور دو رکعت اذان کے بعد پڑھنے کا اجر بہت زیادہ ہے نہیں مغرب کی اذان ہوتی تو وہ ادھر ادھر کسی اور پڑھ لیتے اور اسی طرح فراغت کے بعد تیر اندازی کرتے اس وقت اتنا اجالا ہوتا کتنے کی جگہ دیکھتے یعنی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی گیم کھیلتے تو گیم کھیلنا ممکن ہے کہ بس فرض پڑھنے کے ساتھ ہی اندھیرا چھا جاتا ہے تو فوری پڑھ لینی چاہیے اور نماز جو مسجدوں میں کرواتے ہیں ان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جتنا ارلی وقت پہ اس کو پڑھ کر سکے بہتر ہوگا اگلی روایت ہے ابن عبداللہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر بالحاجرہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ٹھیک دوپہر کو پڑھتے والعصر پڑھتے جب سورج صاف ہوتا نقی نقی سے ہے آپ دعا میں بھی پڑھتے نا کما ینق الصوب کی صاف کیا کرنا تو صاف ہوتا یعنی بہت کلیئر سورج ہوتا والمغرب اذا جب ڈوب جاتا وجبا کس کو کہتے گر جانا آپ نے سورت حج میں پڑھا ہوگا کے جانوروں کے گرنے پہ کہ جب وجبا کچھ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں وہاں بھی جب سورج غروب ہو جائے بل عشاء اور عشاء کب پڑھتے احیانا یعنی کبھی جلدی پڑھتے کبھی دیر سے پڑھتے اظہار آہم اجتماؤ اجلا اور جمع ہو گئے تو جلدی کر لیتے وہ اظہار آہم اور جب ہم ان کو دیکھتے اب تاؤ کہ وہ بھی پیچھے اب تاؤ سورت توبہ میں پڑھے نا بتیون بتی سست کو کہتے ہیں یعنی جب وہ سستی کرتے خرا تو آپ اس کو مؤخر کر لیتے تھوڑا پیچھے کر دیتے بس صبح اور صبح کی نماز یعنی فجر کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیھا بغلس اور جو صبح کی نماز صحابہ کرام اندھیرے میں پڑھتے غلس کہتے ہیں بالکل اندھیرا جیسے ابھی سورج پوری طرح نہیں کھلا ہوتا پھر پڑھتے تو ساری باتوں کا خلاصہ کیا نکلا کہ فجر کو بہت جلدی پڑھ لیتے یعنی جب سورج ابھی ڈوبنے والا ہوتا اور نماز پڑھنے کے بعد بھی صحابہ کرام لیتے تھے اور اتنی روشنی ہوتی تھی کہ جو تیر وہ زمین پر ڈالتے ان کو وہ نظر آ جاتا تھا پھر اس کے بعد اگلا باب دیکھیں یقال للمغرب مغرب کو عشاء کہنے کی کراہت یعنی کوئی مغرب کی نماز کو اگر عشاء کی وہ پسندیدہ نہیں عن عبداللہ ابن مزنی مزنی رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علل اسم صلاتکم المغرب ایسا نہ ہو کہ نماز مغرب کے نام کی طرح تم کرو یعنی ان کا محاورہ تمہاری زبانوں پہ آ جائے قال فرما بتقول العربی العشاء کہ وہ عشاء ہے تو یہ عرب کلچر کی بات ہے کہ بدوی لوگ جو تھے ان کی نماز کو عشاء اور نماز عشاء کو اتما عین تعمیم ہا اتما سے بکارا کرنے کا مطلب کہتا ہے اسم سے یعنی اس نے کیا فرمایا کہ ان کو مغرب اور عشاء کو پکارا جائے جو نام بتا دیے گئے وہی رکھے جائیں ہاں بعض مواقع پہ صلاۃ العشاء کو صلاۃ الاتما بھی کہا اس لیے اسے درجہ جواز ہے یعنی مین جائز تو ہے اس کو کہنا آپ کے ساتھ ایک نئی लेकिन बेहतर है कि ईशा से किया जाए, क्योंकि कुरान में ये लफ्ज़ बार बार आता है, आपने भी पढ़ा होगा। तो लिहाजा बदलने, आप अपनी मर्जी से कुछ और नाम नहीं कह सकते। मसलन को मगरिब को मगरिबैन नहीं कह सकता, ठीक है, तो वको की नमाज को सलात खलस नहीं कह सकता। फिर इसके बाद अगली बात में देखते हैं, यानी नमाजों के नामों को चेंज नहीं करना चाहिए और उसी के साथ ही रखिए। तो फिर उसके बाद देखिए नमाज ईशा की फजीलत। अनायशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलत ईशा की नमाज में देर कर दी। ये जो लफ्ज़ आतमा पीछे पड़े ना अपने, उसमें भी अब आपको यह मतलब समझ आया। आतमा कहते हैं देर से पढ़ी हुई नमाज, तो आतमा नबी सल्लम ने, आप जानते हैं कि ईशा की नमाज को ज़रा देर से पढ़ना भी पसंदीदा है, इसमें कोई हर्ज नहीं होता कि नमाज को कोई थोड़ा सा देर से पढ़ ले। तो वही बात इधर कर दी गई कि नबी सल्लम ने ताखीर से की वजह, और ये वाक़या इशात इस्लाम से पहले का है। फलम यखरुजु हत्ता काला उमरा, अभी घर से तशरीफ नहीं लाए थे कि हजरत उमर ने कहा, नामन नासु वसबियानु, सो गई औरतें और बच्चे, फ़खरजा अहलिल मस्जिदी, मस्जिद वालों को, मा यंतज़िरुहा अहद मिन अहलिल अर्दी गैरुकुम, ज़मीन में तुम्हारे अलावा कोई भी इस नमाज का मुंतजिर नहीं है। क्या समझ आई, बड़ी प्यारी रिवायत है कि औरतें भी सो गई, और ऑफकोर्स औरतें पढ़ के सोई होंगी। तो आपने सहाबा की तारीफ की हजरत उमर ने कि देखो तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम इस इंतजार कर रहे हो। तो क्या पता चला कि और कामों में जब इंसान उठता है इंतजार करना चाहिए और उसके लिए जागना चाहिए, खास तौर पे नॉर्वे में रहने वालों के लिए, फिर गर्मियों की ईशा के लिए, कि जिनको रात को फिर 11-12 बजे तक भी नमाज के लिए जागना पड़ता है, बहुत स्कूल जाते हैं। तो क्या करें भाई, सब्र करें आप, सर्दियों में यही नमाज पढ़ें, फिर आप चाहे 5 बजे सो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो अल्लाह ताला आपका मेरा कुछ लेता नहीं, गुजरता है उसको अल्लाह ताला किसी न किसी तरह बदल देता है। और हम अपनी मर्जी से तब्दीली तो नहीं कर सकते कि रोजे को छोटा कर लें या नमाज को आगे पीछे कर लें। ये तो मक्का वालों की आदत थी कि वो सालों को भी आगे पीछे करते थे। तो पता क्या चला कि ईशा की नमाज मस्जिदों में थोड़ी, मूसा रदी अल्लाह अन्हु काल कुन तो अना वसहाबी लजीना कदीमू माइया फिस सफीनती रदीहुम नुजूलन फी बकी बुतखान। हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, मेरे साथी जो कश्ती में मेरे वादी बतखा में ठहरे हुए थे, नजूल कहते उतरना, नजल जैसे होता है ना, बुतखान की वादी में, आप कह लीजिए कि एक स्टॉप ओवर था। वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीना थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में थे। नावब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदल इशाई कुल लैलती नफरुम मिनहुम। होता क्या कि था हर एक गिरोह बारी बारी हर रात ईशा की नमाज के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में करना पस था, या तो नावब यानी आपकी पीछे पड़ता, यानी जो लफ्ज है नबीया, इसका मतलब ये है कि हाजिर होना किसी चीज का आपके सामने, मतलब सुना कि तनावुल है, फर्क है रूट इसका, लेकिन मफहूम समझे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होते थे लोग, और एक गिरोह जाता था और दूसरा। फवा फकन नबी सलामु अना वसहाबी, कहते हैं कि इतफाक से एक मरतबा हम सब यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के, मतलब वो बादु शुगली फी बादी अमरिन, आप किसी काम में मशगूल अलैहि वसल्लम मसरूफ थे और ये वहां जाकर इंतजार कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, फातमा बिसलाती हत्ता लैलू, फिर नमाज को थोड़ा सा मौखर कर दिया गया यहाँ तक के रात जो थी वो इतने इतने लेट हो गई। फिर उसके बाद क्या, सुम्मा खरजत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी बाहर बिहिम, फिर उनके साथ नमाज पढ़ी। फलम्मा कदा सलातहू क़ाल लिमन हज़रहू, फिर जब फारिग हो गए तो आपने पूछा उन लोगों से जो कि उस नमाज में हाजिर हुए थे, हज़रहू यानी हाजरीन थे, अला रिस्लिकुम अबशिरू, वक्कार के साथ बैठे रहो और खुश हो जाओ, नेमतिल्लाही अलैकुम, क्योंकि अल्लाह का तुम पर एहसान है, यानी ये तुम पर अल्लाह की नेमत है। अन्नास युसल्ली हाजी सात गैरुकुम, कोई और इसके सिवा ऐसा नहीं, यानी किसी और अलावा नमाज नहीं पढ़ी। औ काला, या कहा, मा सल्ला हाजी सात अहदुन, तुम्हारे अलावा इस वक्त पर किसी और ने नमाज नहीं पढ़ी। ला यदरी अय्युल कलीमतैनी, मुझे नहीं पता कि दोनों में से आपने कौन सा कलिमा बोला। काल अबू मूसा, तो अबू मूसा ने कहा, फराजाना, मा, खुश हुए साथ इसके समय ना जो हमने सुना मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, नबी ने लोगों को देर से नमाज पढ़ने पे ऐसी प्यारी बात सुनाई कि लोग खुश हो गए। पता चलता है कि जो दाई ये दीन होता है या दीन की बात सिखाने वाला है, उसको हमेशा लोगों को अच्छा नहीं चाहिए। अगर वो देर से इंतजार करें तो एक अच्छा जुमला बोल दीजिए जिसकी वजह से हो जाए और उनकी थकन दूर हो जाए। और दूसरी बात मैं ये पढ़ते सोच रही थी कि बाकी अगर आप सर्दियों में या में खासतौर पे देखिए कि हमें अपनी नमाजों के लिए जागना पड़ता है, लेकिन जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनके घरों के पास से वो अपने हिसाब से सो चुके होते हैं क्योंकि उनको तो किसी नमाज की फिक्र नहीं। तो अक्सर फिर जहन में आता है कि जाग जाए, इनको हमारी तरह नहीं है कि नमाज के लिए जल्दी उठना है या रात को देर तक जागना है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो ये एक ऑनर भी तो है ना, अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को ये खूबी दी है। और अल्लाह का यकीनन अपने बंदे पे प्यार आता है कि जो जागता है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। तो आपके मेरे लिए ये सारी दलील है कि कभी अगर नमाज के लिए हमें इधर उधर होना पड़े, अपने आप को किसी काम से निकालना पड़े, तो इस पर खुश हों क्योंकि हम की वजह से दूसरों को टाइम भी देते हैं, उनके लिए आसानियां भी करते हैं और कभी कभी मुश्किल में भी पड़ जाए। तो कोई ऐसा काम अनयूजल हो जाए तो फिर अल्लाह से कहा करें कि अल्लाह ताला मेरे इस अमल को आप कबूल फरमाइए। शाही सो जाना नमाज से पहले का, यानी नींद का इतना गलबा आ गया कि जाग ही नहीं सकते। ईशा पहले लिमन गलिबा, उस शख्स के लिए जिस पे गालिब आ गई नींद, यानी जिसको शदीद नींद आ जाए तो वो ईशा पहले सो सकता है। पीछे हमने पढ़ा था ना कि नहीं सोना आम हालात में इट्स नॉट गुड, लेकिन जब कोई एक्सेप्शनल केसेस हैं, सफर पे हैं, थके हुए हैं या कोई और ऐसी हालत है कि नमाज की समझ ही ना आए, तो फिर वही बात सोच लीजिए कि अंतुम सुकारा ला तकरबुस सला तब अंतुम सो, कितना जाओ जबकि तुम नशे की हालत में हो। तो वही बात इधर है कि नींद की हालत में फिर इंसान डिले कर ले। आइए देखते हैं हदीस, आतम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलिशा, ताखीर की अल्लाह के नबी ने ईशा की नमाज में। वनादा उमर तकद्दम ज्यादा, और हजरत उमर ने आकर आपसे अर्ज किया, अल्लाह के नबी से पूछा, कानु युसल्लून फीमा बैना यगीब अश्शफक इला सुलुसिल लैलिल अव्वल, इधर बच्चे तो सो रहे हैं। और यहाँ इस रिवायत में इस कदर अल्फाज ज्यादा हैं कि हजरत आयशा ने फरमाया कि सहाबा कराम सुर्खी गायब हो जाने के बाद रात की पहली तहाई तक किसी भी वक्त नमाज पढ़ लिया करते थे। यानी सहाबा में से जिनको जल्दी सोना, मगरिब का वक्त खत्म हो गया और ईशा का बिल्कुल जो इब्तदाई वक्त था तो पढ़ लेते थे। पढ़ी जा सकती है, पढ़नी चाहिए, लेकिन ये जितनी भी रिवायात हैं इसमें ये मुराद है कि अल्लाह के नबी देर से पढ़ते और पसंदीदा अमल है। लेकिन अगर इससे ये मुराद वक्त पे पढ़ लेते थे या जल्द वो उनकी नमाज नहीं होती पढ़ लेते थे। वफी रिवायत इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा कल, एक और रिवायत में है, फखरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निकले अल्लाह के नबी सल्लम, कानियानजुरु इलैहिल आन, इस तरह गोया कि मैं अभी भी उनको देख रहा हूँ, यानी अपनी आंखों से मैं देख रहा हूँ अल्लाह के नबी को निकलता देखकर। यकतरु रासुहुमान, उनके सर से रहे थे, वादियन जो रासी ही डाल रहे थे, आप अपने हाथ को अपने सर पर, यानी आप अपना हाथ सर पर रखे थे। फकाला, तो आपने फरमाया, इस जुमले को सुनिएगा और अल्लाह के नबी की अपनी उम्मत के लिए महसूस कीजिएगा, लौला नशमती, अगर ना मुझे तकलीफ का एहसास होता अपनी उम्मत, यानी अशुक का शक से बोझल गुजरना, मुश्किल गुजरना, मेरी उम्मत पर ये बात मुश्किल ना होती, बन को हुक्म दे देता है यूसल्लू हा कजा कि वो नमाज पढ़ा करें, इससे बहुत सारे लोगों की मुश्किल का फिक्र ना होता तो नमाज को लेट ही करवा। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हमें अपने हालात के मुताबिक समझनी है और इसको अच्छे तरीके से अमल को अल्लाह से मोहब्बत से जोड़ते जाएंगे ये सारा कुछ आसान हो जाएगा। और अल्लाह की मोहब्बत नहीं है वक्त पे नमाज पढ़ना भी मुश्किल ही लगता है। और एक और बात है, इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बात मिलती है, कैफ वदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला रासी यदो, कैसे हाथ बिने अपने सर पे, यानी हजरत इब्न अब्बास अपना हाथ रख कर दिखाया करते थे, कहता फबद्दा बैना साबी शैयन मिन तबदीद। सुभान अल्लाह, देखिए कितने गौर से उन्होंने कि अल्लाह के नबी ने इस तरह अपने सर पे हाथ रखा था, अपनी उंगलियों को कुशादा करके उनके सर पर यूं फेरने लगे, कैसे रासी, यानी ये पूरी तफसील बयान पर उंगलियों की पोरे रखते और उसको बालों में ले जाते, और हत्तमसत इबहाम हो तरफ अलुजुनी मिम्म यलिल वच्छा अला सुदी व नहयाही ला युकस्सिरु वला यबतुशु इल्ला कजालिका, तो अंगूठा जा लगा ना सुस्ती की और ना जल्दी की बल्कि इसी तरह जैसे कि वो कहते हैं कि मैंने तुमको बताया। तो सहाबा किराम अल्लाह के नबी को बड़े गौर से देखा करते थे। हकीक एक तो लफ्ज़ होता है कि मुँह से बोलना, इब्ने अपने को जुमला बोला, लेकिन यह हकीक कैसी, जैसे आप कहते हैं ना हिकायत बयान की या करके दिखाया, सहाबी का अमल है इसमें, मुँह से कुछ नहीं बोले लेकिन नबी सल्लम के उस तरीके को करके, उसकी ज़ुबान में आप कह लेते कि विजुलाइज करके दिखाया कि अल्लाह के नबी ने हाथ कैसे रखा था और अंगड़ियों को सर के अंदर फेरा था और फिर उसको किस तरह से कान के पास लेकर आए थे। फिर अगली ये का वक्त ईशा इला नसफिल, ये बड़ा अहम, सारे लोग पूछते हैं कि ईशा का इंतहाई वक्त कौन, तो आइए देखते हैं ईशा का वक्त कब तक है, आधी रात तक है। और अनसुन फ़काल अफ़ीही, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये रिवायत है, यानी उसी में कुछ इजाफ़ भी थी, वबी से खातिमा ही लैलत इज़िन, आपकी अंगूठी की चमक का समा मेरी आंखों में इस तरह गोया कि मैं अभी इसको रात, यानी अल्लाह के नबी जब अपने चमक रही थी वो भी मुझे अभी देख, ठीक है। तो इसमें यहाँ तो मुख्तसर रिवायत है, लेकिन जब आप इसको तवील रिवायत पर देखेंगे तो पता चला कि अल्लाह के नबी ईशा को निसफ शब तक मौखर करते थे। अब यहाँ एक इशू है आपके भी जहन में आना चाहिए, हमारे कल्चर में बहुत मारूफ है कि ये रात 12 बजे को कहते हैं, लेकिन हिस्सों में घूमते फिरते हैं तो आप देखते हैं कि वक्त तो बदल रहे हैं। मसलन आप देखिए कि अगर आप देखिए कि नॉर्वे में 11:30 के करीब ईशा हो रही है तो फिर 12 बजे तो आज गुजर गया, तो फिर निस्फ तो ना हुई ना। फिर इसी तरह सर्दियों में अगर गया 5 बजे ना, उसके बाद 5 वक्त शुरू हुई और रात सुबह 9 सा तरीका रख लें और इंशाल्लाह ताला फिर आपको भूलेगा नहीं, जो भी उस मुल्क की मगरिब की, ठीक है। दूसरी तरफ फजर का वक्त लिखिए, अब मगरिब से फजर का बिल निस शब होती है, मिडल पार्ट यानी वक्त तक के वक्त को अदा कर दीजिए, ठीक है। इसको मिडल में लाया जाता है, तो ये जाता है कि किस तरह से निस शब का वक्त हम तलाश कर सकते हैं। इसमें घड़ी की सुइयां, आज हमने देखी है कि घड़ियों से टाइम देखते हैं, पहले दौर में तो ऐसा नहीं होता था, तो बहरहाल ये कि इन कोशिश करनी चाहिए जल्दी पढ़े। अब सवाल है कि अगर नेक्स्ट टाइम गुजर गया तो क्या, अब नहीं पढ़ी तो ना पढ़े, पढ़िए इसमें स्टॉक है कुछ है पढ़े, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि आदत नहीं बना लेनी चाहिए कि ईशा नमाज बहुत ही लेट ही करते जाए और इतनी लेट करें कि बस फिर आखिरी वक्त में मुश्किल हो। मैंने तो अपने ऊपर जो नमाज आप वक्त के शुरू में पढ़ लें वो अच्छी है, और बाकी जब वो सिर्फ एक अपनी जगह है, पढ़ी नहीं वो हर वक्त खट 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 चलता रहता है, पढ़ ले नमाज के बाद दूसरी नमाज में बहुत वक्त है। अच्छा जो लोग पिछली नमाज लेट करके पढ़ते हैं ना, अब जो ही पढ़ी उसके थोड़ी अगली शुरू होगी, कहते हैं फिर नमाज, वो इसलिए वक्त हो गया कि आपने देर से पढ़ी है, अगर आपने जल्दी तो उस वक्त नमाज के दूसरी नमाज के बीच में बहुत टाइम था, तो कम अज कम फर्जों को फौरन पढ़ लें, पता वक्त का नहीं पता क्या हो स्टाक को, फर्ज पढ़ लीजिए उसको साथ अदा करते रहे और बिला वजह डिले नहीं करना चाहिए। तो ये था मगरिब और इशा का थोड़ा सा वक्त, अब आई की नमाज का भी वक्त देख लेते हैं। बाप क्या है, वक्तुल फजरी, फजर का वक्त। अन अनसिन रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि इनसे हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हद की, क्या कहा, अन्नहुम तसहरु मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा नफ्स सली खाई, ये तसहरु के सहरी खाना, तुम सलाती फिर खड़े हो गए नमाज के लिए, कौन दर कुल तो मैंने कहा या मैंने पूछा, काना बैनहुमा कितना था इन दोनों, यानी सहरी और नमाज के इन दोनों कामों के बीच में कितना वक्त लगा, काला फरमाया कद्रु आया, तो आपने फरमाया 50 या 60 आयात की तिलावत के बराबर। सुबहान अल्लाह, ये बात है कि सहरी बिल्कुल आखिरी वक्त तक खा सकते हैं और खानी चाहिए, जो रोज रात को खा लेते हैं वो सुन्नत के, लेकिन ये देना पड़ेगा। दूसरी बात है कि इतनी लंबी 70 आयतें, तो आप सोचिए अगर शुरू का वक्त ना हो तो फिर तो सूरज निकल आए और हमारी शायद सबसे मुख्त, और जब लेट पढ़ेंगे तो फिर फजर की तावत ज्यादा नहीं होगी। यहाँ ये बात फिर नोट कर लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खैरत फजर की नमाजों में करते थे, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। फरमाते हैं कि मैं अपने अहलो याल के साथ बैठकर सहरी खाता, फिर मुझे जल्दी पड़ जाती, पता चला कि घर में सहरी खा लेते और फिर उसके बाद जल्दी पढ़ने से मुराद ये कि अल्लाह के नबी सहरी ले नहीं करते थे, उसके बाद नमाज पढ़ लेते थे, अंधेरे में पढ़ते थे, और ये आपका सारी जिंदगी का मामला। जल्दी ईशा क्या लेट, फजर क्या जल्दी, क्या लेट असर क्या जल्दी, और फिर उसके बाद मगरिब भी जल्दी होती है, जिसमें ईशा की नमाज और जोहर की नमाज इसको थोड़ा सा को इब्तदाई वक्तों में। اگلا باب دیکھتے ہیں. صلات بعد الفجر حتی طرف فجر کے بعد سورج کے بلند ہونے تک نماز کا حکم, یعنی کب تک پڑھ سکتے ہیں فجر کی نماز, یہ مراد ہے. شہد عندی رجال مردیون, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, انہوں نے فرمایا میرے سامنے چند اچھے لوگوں نے بیان کیا. مردیون کون ہے؟ پسندیدہ. رضا سے ہے رضی, رضوان, رضا ان میں سے پسندیدہ یعنی معتبر میری نظر میں عمر تھے, یعنی مین جو بہت اچھے لوگ تھے, یہ نہیں کہ ایسی بات کرنے ٹک لوگ تھے. انہوں نے بات کی اور کیا بتایا, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم نے منع کر دیا نماز کے بعد, کب تک, حتی تشرق الشمس, جب تک کہ سورج ڈھل جائے, وبعد العصر, اور عصر کے بعد, حتی غروب, کے ممنوع اوقات ہیں یہ, ان میں نماز نہیں پڑھی جاتی. ہاں لیکن اگر کسی کے کو فرض قضا ہو گئے ہیں جا سکتا ہے. اسی طرح کچھ سبب ہوتے ہیں, جو سببی نماز ہے اس کا مراد ہے کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں مصر میں مسجد میں گئے تو پڑھ لیں, تو اسی صلات کسوف ہے, جنازہ ہے, سجدہ تلاوت آ گیا شکر, تو ایسے پڑھا جا سکتا ہے. اس طرح کا حرام نہیں. بعض لوگ ان چھوٹے چھوٹے ایشوز کو بہت بڑا پکی مسئلہ بنا لیتے ہیں, تو وہ عام طور پہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحروا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها. حضرت ابن عمر سے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت اپنی نمازیں ادا کرنے کی کوشش نہ کیا کرو. وہی بات, کیونکہ ایسے وقتوں میں جو سورج کو پوجنے لے لیتے, اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے وقتوں میں شیطان سورج کے سامنے جب سجدہ کیا جائے تو گویا کہ وہ شیطان کو سجدہ ہو جاتا ہے. تو مماثلت سے بھی بچنا, اور ہمارے لیے اتنے کافی ہے کہ اللہ کے نے منع کر دیا. قال ابن عمر رضی اللہ عنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابن عمر ہی سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اذا طلع حاجب الشمس فاخروا الصلاه حتى ترتفع, جب آفتاب کا کنارہ طلوع ہونے لگے, مراجعہ کے طلوع آفتاب شروع ہو جائے, تو نماز موقوف کر دو یعنی روک دو. حت غاب حاجب الشمسی, اور جب سورج کا کنارہ ڈوبنے لگے, مراد عصر کے بعد, تغیبہ, تو نماز موقوف کر دو یہاں تک کہ سورج پورا چھپ جائے. وہی بات ہے, یہاں عصر کے بعد کچھ نہ پڑھو, تھوڑا اگر لیٹ ہو گئے تو ویٹ کرو پورا یا پورا نکل آئے تو پڑھو. حدیث ابی حریرہ رضی اللہ عنہ, حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیعت, اللہ کے نبی نے روک دیا دو قسم کی بیعت سے, وعن اور سے, لبستینی, دو لباس سے, یعنی دو طرح کی تجارت آپ نے منع کی اور دو طرح کے لباس سے آپ نے منع کیا. تقدمہ یہ حدیث و زیادہ فی حاضی روایت, اور اس روایت میں یہ زیادہ ہے, ون صلاتین, اور دو نمازوں, حت نہا عن الصلاۃ بعد الفجر, روک دیا نماز فجر کے بعد, حتی تت کے سورج طلوع ہو جائے, و بعد العصر, اور عصر کے بعد, حتی تغرب الشمس, یہاں تک کہ کیا پتہ چلا کہ رات دن میں کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں جن میں نماز ادا کرنا مکروہ, طلوع آفتاب تک پہلی وجہ لکھ لیں, فجر کے بعد سے جب تک سورج نہ نکل آئے اس وقت نماز, پھر نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک یعنی مغرب کے ابتدائی وقت تک, پھر جب کہ دوپہر کے وقت سورج بالکل آسمان کے بیچ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر فرض ہو گئی ہو تو پڑھنا جائز ہے. اسی طرح ایک ایکسیپشن ہے اس فجر کے فرضوں کے بعد, اور وہ کہ اور فجر کی نماز سے پہلے نہ پڑھی ہوں تو ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور جو لوگ جماعت ہوتے ہوئے بھی سنت فجر پڑھتے رہتے ہیں کہ بھائی خیال جائے کہ فرض کے بعد نہیں ہم پڑھ سکیں گے, تو وہ حدیث کی خلاف ورزی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جتنے ممنوع اوقات تھے نا, یہ سب یہاں مکہ مکرمہ میں کسی وقت کب کوئی بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کو مسجد میں جانے کے, تحیت المسجد کے, کسی بھی طرح کے نوافل جو ہے سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ میں بہت ساری چیزوں کو دوسری چیزوں سے الگ کر دیا. میرے اور آپ کے لیے ایک فائدے کی چیز ہے کہ ہم اپنی اپنی جگہوں پہ ان کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں لے جائے تو پھر ہم وہاں پہ اس کو پورا کر سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرمائے. آپ دیکھیں کہ یہ اتنی ہی ڈیٹیلز کی کیا ضرورت ہے, جو بھی ہو گیا جس کو جو مرضی کرنا ہے. ان سے پتہ چلتا ہے کہ جب نمازوں میں انسان اس طرح کرتا ہے تو عام زندگی میں بھی آسان ہو جاتا ہے اللہ کے حکم کو ماننا. بعض دفعہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے, یعنی نمازوں میں تو ہم واقعی 100% یہی کچھ کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو پیچھے لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے عافیت رکھے. آج اور کوئی سوال ذہن میں تو آپ پوچھئے, اور क्या आपको आज के जो औकात थे इनको मशवरा ज़रूर दूंगी कि बुखारी के अंदर किताबो सलात पढ़ने के दौरान जो जो मौजूद आप इन्हीं को नवी किताब के अंदर जो टॉपिक आते हैं उसमें भी पढ़ लें तो फ़ायदा होगा। देखें जब हम डिफरेंट टाइप के हदीसें पढ़ते हैं, क्योंकि हम इस वक्त सिर्फ सही बुखारी पढ़ रहे हैं ना, लेकिन जैसे कोई एक किसी एक टॉपिक पे, मसलन मैंने नमाज नबी का नाम लिया, इसी तरह तफहीमुस सुन्ना सीरीज में किताब बाब बने हुए हैं, लेकिन दोनों को पढ़ लें तो आप देखेंगे कि आपकी नमाजों में कई शुबे जो थे ख़त्म हो गए। भी पढ़ के और भी होमवर्क लेना चाहते हैं तो आप जाइए और जवाब पढ़ लें। मैंने देखा है जो इल्म लेने के बाद क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने से वो आमतौर पर नहीं मिलता। ठीक है, जज़ाक अल्लाह खैर। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु तआला खैरि ख़ल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन।